أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا له الفداء. أما بعد، بس ہماری شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت آل محمد میں چل رہی ہے، اور آج ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ عدل کلی کے عنوان کے ضمن میں ہی اس بحث کو شروع کر دیتے ہیں، اور سب سے پہلی چیز جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی عمر کے بارے میں ہے. میں یہ مطلب واضح پہلے ذکر کر دوں کہ ہماری جو عدل کلی میں بحث چلی تھی اس میں عرض کیا تھا تین بحثیں اہمیت کی حامل ہیں. ایک عدالت کی تعریف، اس کو تبیین کیا. دوسری یہ کہ آیا عادل جو ہے وہ فطرتی ہے یا نہیں، اس کو بھی بیان کیا اور ثابت کیا کہ اسلام کی نگاہ میں عدالت جو ہے وہ فطرتی ایک چیز ہے اور جو باقی نظریات ہیں وہ درست نہیں ہیں، اور اجمالی طور پر ایک نقد جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا. اور تیسری بحث جو تھی وہ یہ کہ آیا یہ عدل کلی جو ہے وہ عملی شکل اختیار کر سکتا ہے یا نہیں. یہ والی تیسری بحث مرتبط ہے ہماری امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کے ساتھ. تو لہٰذا آپ وہ تیسری صورت اسی زندگی سیرت کے اندر جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. ایک سوال جو ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے مخالفین کی طرف سے، جو بھی مہدویت کی سے آشنا ہوتا ہے اور مکتب تشیع کے نظریے سے آگاہ ہوتا ہے کہ امام زمانہ زندہ ہیں، غائب ہیں اور تقریباً 1500 سال سے، تو سوال یہ کرتے ہیں کہ آیا ممکن ہے کہ بشر اتنا زیادہ زندہ رہ سکے؟ آیا بشر فزیکلی اعتبار سے اتنا عرصہ گزار سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ بشر کے جو بدن ہے، اس کے جو سیلول ہیں، ان میں اتنی لمبی زندگی گزارنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک موقع آتا ہے کہ یہ فاسد ہو جاتا ہے. لہذا استبعاد کرتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ 1500 سال جو ہے وہ امام زندہ رہے. جواب اس کا یہ ہے کہ خداوند متعال کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو چونکہ کلامی اعتبار سے یہ بات ثابت ہے کہ خدا قادر علی الاطلاق ہے، تو خدا کے لیے مشکل نہیں ہے. اس وہ خدا جس نے اس کائنات کو خلق کیا، وہ خدا جس نے اس انسان کو خلق کیا، کیا بعید ہے کہ ان خدا کا ارادہ یہ ہو کہ یہ بشر، یہ مثلا ایک آدمی، ایک شخصیت، یہ کئی ہزار سال تک زندہ رہے. جناب نوح علیہ السلام کی مثال موجود ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. بس استبعاد نہیں کیا جا سکتا، اور سائنسدانوں کو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعلاً ایسی ٹیکنالوجی یا ایسی دوائی یا ایسی کوئی کیمیکل ہمارے پاس ابھی نہیں آیا کہ جس کے ذریعے ہم ایک انسان کی اس بدن کو طولانی مدت تک جو ہے وہ باقی رکھ سکیں. یہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ آپ کی قدرت میں نہیں ہے. جس طریقے سے سائنس ترقی کر رہی ہے، ممکن ہے آئندہ سالوں کے اندر ایک ایسی چیز کشف ہو جائے کہ جس کے ذریعے بشر جو ہے وہ عادی طور پر جو ہے وہ کئی سو سال، کئی ہزار سال جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہو. بس سائنس دان بھی اتنے قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اس طریقے کا امر جو ہے وہ بعید ہے یا محال ہے. اس کے بعد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کے بعض مشخصات کو ذکر کرتے ہیں. ایک روایت پیغمبر سے نقل ہے کہ جس کو مختلف احادیث کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، وہ یہ کہ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذلک اليوم حتی یخرج رجل من ولدی. اگر اس دنیا का फ़कत एक दिन बाकी रह गया हो, यानी जो मुद्दत मुअय्यन थी दुनिया की उसमें फ़कत एक दिन बाकी रह गया इस दुनिया के ख़त्म होने के लिए, तो खुदावंद मुताल इस दुनिया को इतना, इस दिन को इतना लंबा कर देगा कि मेरे औलाद में से एक शख्स खुरूज करेगा कि जो अदल व इंसाफ से इस कायनात को पुर करेगा। ये रिवायत मुतवातिर है। अब बाज़ आपने कहीं देखा होगा या आपको कहीं मिलेगा ऐसा, मतलब बाज़ कहते एतराज़ करते हैं आकर के, कैसे हो सकता है कि एक दिन में जो है वो इतना लंबा कर दिया जाए, पूरा मंजूमा शमसी जो है वो ख़राब हो जाएगा, फ़लाना फ़लाना, यानी बहुत सारे एतराज़ात करते हैं। कुदरत इलाही में एतराज़, यानी जो खुदा को मानते हैं वो आकर इस किस्म का एतराज़ करते हैं। मंजूमा शमसी क्या है? खुदा ने खल्क किया है, मखलूक खुदा है, खुदा जिस तरह चाहे उसको इदारा कर सकता है। और फिर ये एक तमसील है, मिसाल है अहमियत को समझाने के लिए जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर में पोशीदा है, कि ये ज़हूर इतना ज़रूरी है और इतना अहमियत का हामिल है कि अगर फ़र्ज कर लें इस दुनिया में एक दिन बाकी रह जाए तो खुदावंद मुताल उस दिन को लंबा कर देगा और खुरूज लाजमी होगा, ज़हूर लाजमी होगा। तो लिहाजा इस किस्म के जो एतराज़ात हैं वो वारद नहीं हैं। इसके बाद शहीद मुतारी रहमतुल्लाह अलैह जिक्र फरमाते हैं, एक और रिवायत फरमाते हैं कि अलमहदियो युबअसु फी उम्मती अला इख्तिलाफिन मिनन्नास वलज़लाज़िल, कि मेरी उम्मत से पैगंबर ही फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत में से महदी मबऊस होगा ऐसी शराइत में कि लोगों में इख्तलाफ होगा और जलजलों का ज़माना होगा। यहाँ जलजले से मुराद ये नहीं है कि ज़मीन जो है वो अपने तबीई अंदाज में लरज़ रही होगी, बल्कि वही जो फसाद होगा ज़मीन पर, आपस में लड़ाई झगड़ होगा, जो उसकी तरफ जो है वो नाजिर है ये। फिर फरमाते हैं फ़यम लाउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुल अत ज़ुल्मन व जौरा, और वो महदी इस ज़मीन को अदल व इंसाफ से उस तरीके से भर देगा जैसे ये ज़मीन ज़ुल्म व जोर से भरी हुई होगी। यर्ज़ अनहु साकिनुस समाए व साकिनुल अर्ज़, और ज़मीन व आसमान में रहने वाले तमाम मौजूदात उससे राज़ी होंगे। युक़स्सिमु अल-माल सिहाहा, माल की तकसीम दुरुस्त तरीके से अंजाम देगा। और ये बहुत ज़्यादा लंबी रिवायत है कि मैं सारी उसको नहीं पढ़ता, आप खुद बुजुर्गान दोस्तान जो हैं इसकी तरफ जो है वो मुराजा करेंगे और इस रिवायत को पढ़ेंगे। इसके बाद शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह एक और मतलब इसी महदी मौऊद के उनवान से ज़िक्र करते हैं, ये अगली तकरीर है उनकी कि जो उन्होंने अदले कुल्ली के बाद जो है वो बयान की। इसमें भी चंद नुकात की तरफ इशारा फरमाते हैं। पहला नुक्ता ये जिक्र करते हैं कि महदवियत को अगर कुरान के उनवान से देखें तो वहाँ भी कुल्लियात मौजूद हैं। रिवायात का ज़हूर है इस बात में कि एक दिन आएगा ऐसा कि जिस जब ये कायनात अदल व इंसाफ से पुर हो चुकी होगी। मसलन आप सूरह अंबिया की 105 नंबर आयत की तरफ मुराजा करें तो खुदावंद मुताल इस तरीके से इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वलकद कतबना फिज़्ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादिय्यस सालिहून, कि हमने ज़बूर में लिखा मिन बाद ज़िक्र, और मुफस्सिरीन ने कहा ज़िक्र से मुराद यहाँ तौरात है, यानी तौरात के बाद हमने ज़बूर में भी लिखा कि ज़मीन के वारिस जो हैं वो सालेह इबाद बनेंगे। अब इबाद सालेह जो हैं इस ज़मीन के वारिस बनेंगे, यानी ज़मीन पर हुकूमत होगी इनकी, और अगर सालेह इंसान हाकिम बन जाए तो ज़ाहिर ही बात है कि अदल व इंसाफ उसके अंदर होगा। इसी तरह सूरह तौबा की 33 नंबर आयत में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह वलौ करिहल मुशरिकून, कि ये वही है कि जिसने रसूल को भेजा हिदायत के साथ और दीन हक के साथ ताकि वो दीन को गलबा अता करे चाहे मुशरिकीन उससे नफरत ही क्यों ना करते हों। मफ़हूम आयत ये बनता है। लिहाजा इसके अलावा भी बहुत सारी आयात हैं कि जो दलालत करती हैं कि महदवियत एक कुरानी असल है, इख्तिरा और ईजाद नहीं की गई बाज़ उलमा की तरफ से, बल्कि ये कुरानी असल है यहाँ पर। हाँ, जुज़ियात ज़िक्र नहीं है और कुरान जुज़ियात की तरफ भी बाज़ औक़ात नाज़िर, बल्कि अक्सर औक़ात नाज़िर नहीं होता। एक कायदा कुल्ली देता है, एक फ़िक्र कुल्ली देता है, एक नज़रिया देता है, और तदबीक़ात और जुज़ियात जो हैं वो पैगम्बर बयान करते हैं, और पैगम्बर ने बहुत तफसील के साथ महदवियत के ज़ुमरे में बयान किया है। मुमकिन था अगर फ़र्ज़ करें शियों की किताबों में ये अहादीस होती तो कोई एतराज़ ये करता कि अगर पैगंबर जो है वो अगर ये इस्लामी मसला था तो फिर तमाम मकातिब फ़िक्र उसको नकल करते इत्तेफाक़न नकल हैं। शिया ने भी नकल किया, सुनियों ने भी नकल किया, अदियान की तरफ से भी नकल हुआ, तो मालूम हुआ कि ये एक दीनी फ़िक्र है, खुदा की तरफ से अता कर दी फ़िक्र है ये। और इसी तरीके से पैगंबर की तरफ से फिर बहुत सारे रिवायत हैं, फ़क्त आइम्मा की तरफ से रिवायात नहीं हैं। मसलन यहाँ पे आप अहले सुन्नत ये भी नहीं कह सकते कि महदवियत जो है वो खुद शियों की इजाद करता है या इनके आइम्मा ने इस फिक्र को इजाद किया है ना, बल्कि पैगंबर की मुतवातिर रिवायात मौजूद हैं कि जो महदवियत की जुज़ियात को भी बयान करती हैं। फिर नहजुल बलागा के एक जुमले को यहाँ पर नकल करते हैं जिसमें इमाम इशारा करते हैं इमाम गाइब की तरफ कि अल्लाहुम्मा बला ला तखलुल अर्ज़ु मिन क़ाइमिन लिल्लाह बिहुज्जतिन, कि ये ज़मीन कभी हुज्जत से खाली नहीं हो सकती, इम्मा ज़ाहिरन मशहूरा, या तो वो ज़ाहिर होगा दिखाई देने वाला होगा, व इम्मा ख़ाइफन मग़मूरा, या क्या हो वो पोशीदा होगा और गैबत में होगा, ले अल्ला तब तला हुजजुल्लाह वा बैना तो यहफ़ज़ुल्लाहो बेहिम हुजजहू व बैनाते, के तुलानी एक जुमला है इमाम का। इसके बाद शहीद मुतारी रहमतुल्लाह अलैह महदवियत के इस बात में कि ये फ़िक्र जो है वो दीनी व इलाही है, किसी की इजाद करदा नहीं है, तारीख़ी शवाहिद से इस्तिफादा करते हैं। ये इतनी कवी फिक्र थी महदवियत की और सदर इस्लाम से ही थी, और इतनी बदीही और वाज़े और रोशन थी कि तारीख में मुतअद्दिद झूठे महदवियत के दावा करने वाले पैदा हुए। मसलन आप अगर मुख्तार का ज़माना देखें तो वहाँ पर एक फ़िरका कैसानिया बयान किया जाता है अदियान व मज़ाहिब की किताबों में, और उनके अकायद में लिखा गया है कि वो मोहम्मद बिन हनफिया के जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे उनको इमाम महदी मानते थे और अपने आप को उनका नाइब करार देते थे। अब ये कि इमाम मोहम्मद बिन हनफिया ने अपने आप को इमाम महदी कहा या नहीं कहा, ये कतई तौर पर साबित नहीं है। दूसरा शाहिद जो यहाँ पर जिक्र करते हैं वो ये है कि जोहरी के जो एक बहुत बड़ा आलिम गुज़रा है अहले सुन्नत का और आइमा के दौर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के ज़माने का है ये, जब जनाबे जैद की शहादत की खबर मिली तो उसने ये जुमला कहा कि क्यों ये अहले बैत जो हैं वो इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं, हालांकि पैगंबर ने कहा है कि इन्हीं की औलाद में से एक महदी आएगा कि जो हुकूमत करेगा और उसकी हुकूमत जो है वो जहानी होगी, तो क्यों ये जल्दी कर रहे हैं। तो ये जोहरी का ये जुमला कहना इस बात पर दलालत करता है कि ये फ़िक्र उस दौर में भी बहुत ज़्यादा वाज़े थी और दीनी थी और पैगंबर की तरफ से उन्होंने हासिल की थी। एक और शाहिद जो यहाँ पर जिक्र करते हैं वो है नफ्स ज़किया का क़याम है कि ये अब्दुल्ला महज का बेटा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, और अब्बासी हुकूमत जब कायम होना शुरू हुई और उन्होंने अपनी ये बनू मैया के ख़िलाफ़ एक तहरीक का आगाज़ किया तो उन्होंने सहारा लिया अहले बैत का, और उसमें उन्होंने अपना जो हरबा बनाया वो अब्दुल्ला महज़ था। अब्दुल्ला महज़ का एक बेटा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला महज़ था जिसको नफ्से ज़किया कहा जाता है, उसको महदी के उनवान से मुअर्रफ़ी करवाई अब्बासी हुक्मरानों ने और फिर इसके ज़ैल में अपनी तहरीक को कामयाब बनवाया। इसी तरीके से आप खलीफा अब्बासी मंसूर की अगर आप ज़िंदगी को मुताला करें, उसने अपने बेटे का नाम महदी इसलिए रखा ताकि इसको महदी के उनवान से मुतआरफ़ करवाए। तो ये तारीख़ी शवाहद ज़िक्र किए हैं इस बात पर दलालत करते हैं कि ये फ़िक्र जो है वो दीनी फ़िक्र थी। और हर बंदा जो है वो ये कोशिश कर रहा था कि उससे मुत्तसिफ हो सके, अगरचे ये झूठे थे, लेकिन इनका ये इद्दआ करना इस बात पर दलालत करता है कि लोगों के जहन में ये फिक्र इतनी रच बस चुकी थी कि वो उनसे गलत इस्तेफादा करने की कोशिश करते हैं। आखिरी मतलब जो शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ जिक्र करते हैं वो कयाम की माहियत के बारे में है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम कायम करें कयाम करेंगे और जहूर करेंगे, उससे क्या मुराद है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर मुख्तलिफ नज़रिए जिक्र किए जा सकते हैं कि जहूर हम मुंतज़िर हैं, इमाम जहूर करेंगे तो जहूर की कैफियत क्या होनी चाहिए। तो बाज़ों का ये नज़रिया है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, इमाम सब कुछ करेंगे आकर, या मसलन इस किस्म की और मुख्तलिफ जो फ़िक्रें मौजूद हैं, शेख मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह उसको रद्द करते हैं, फरमाते हैं ज़हूर हकीकी ये है कि इंसान अपने आप को इस काबिल बनाए के हुकूमत जहानी के इदारे करने में चलाने में इमाम का साथ दे सके। और इमाम की गैबत का एक बहुत बड़ा फलसफा यही है कि इमाम इस वजह से गैबत में गए हैं, खुदावंदे मुताल की हिकमत की वजह से। जो फलसफा एक जिक्र किया जाता है वो ये कि इंसानों के अंदर ऐसी काबिलियत पैदा हो जाए कि वो जहानी हुकूमत को इदारा कर सकें, अदल व इंसाफ से काम ले सकें। अभी तक बशर इस काबिलियत तक नहीं पहुंचा और इंसान को हुज्जत ज़ाहरी से जुदा इसलिए किया, चूंकि जब तक हुज्जत ज़ाहरी मौजूद थी वो हिदायत कर रही थी, लेकिन ये बशर उसकी अहमियत को नहीं जान पा रहा था। 11 हुज्जत खुदा को शहीद कर दिया गया। फिर इमाम को गायब करके ये एहसास दिलवाया जा रहा है कि बशर हुज्जत खुदा का मोहताज है, और अपने आप को फिर वो इस काबिल बनाए कि जब हुज्जत खुदा उसके दरमियान में आए तो पिछली खयानतें दोबारा ना करे, हुज्जत खुदा का साथ दे और एक जहानी हुकूमत कायम की जाए, जुल्म जोर का खात्मा किया जाए और काफिरीन और मुशरिकीन को उनकी सज़ा दी जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।